ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा दोबारा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। तो सभी हमारे विद्यार्थिनियों का और विद्यार्थियों का स्वागत है बरसाना धाम में। हरे कृष्णा। टीचर्स का भी स्वागत है। हरे कृष्णा। तो आप लोग सब लोग बरसाने में पहली बार आए हैं। बरसाना में आना मुमकिन होना ये बड़े भाग्य की बात है। वैसे तो कम्युनिटी पोस्टिंग है हमारी, लेकिन राधा रानी की विशेष कृपा है कि आप लोग सब बरसाने में आ सके। यहाँ का एक पल का भी निवास जो है वो बहुत भाग्यशाली है। यहाँ पर कुछ लोग परमानेंट रहते हैं, कुछ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति टिकट निकाल कर नहीं आ सकता, रूम बुकिंग करके नहीं आ सकता। केवल राधा रानी की कृपा होगी तो ही आ सकता है, क्योंकि वो यहाँ की स्वामिनी है। श्री कृष्ण भगवान पूरे विश्व के स्वामी हैं और उनकी स्वामिनी राधा रानी है, कृष्ण स्वामिनी राधा रानी। और ब्रज में जो भी होता है वो राधा रानी की इच्छा से ही होता है। पूरे विश्व में भारतवर्ष को बड़ा भाग्यशाली माना गया है, क्योंकि भारतवर्ष में सभी भगवान के अवतारों ने अवतार लिया, भारतवर्ष में सभी संतों ने अवतार लिया, जन्म लिया। हर राज्य में, हर गांव में, हर देश में हमारे यहाँ पर संत हैं, संतों की कमी नहीं है। तुकाराम महाराज कहते संतों का मड़ा है। मड़ा मतलब क्या है? खेती, खेती है यहाँ पर। संतों का इतना उपज है यहाँ पर कि संत ही संत है। इसलिए भारत भूमि जो है पूरे विश्व में भगवान ने जितना विश्व निर्माण किया है, भारत भूमि बहुत ही भाग्यवान भूमि मानी गई है। और इसमें जन्म प्राप्त करना भी भाग्यवान माना गया है। अनेक जन्मों के पुण्य के बाद में जब व्यक्ति योग्य होता है तो भारतवर्ष में जन्म लेता है, क्योंकि संतों के द्वारा जो पुनित हो गई है, जिनकी मिट्टी कह सकते हैं, रज कह सकते हैं, वो देश है ये। और इस भारतवर्ष में भी भगवान को मथुरा मंडल बहुत प्रिय है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जन्म लेना चाहा। बाकी सब भगवान के अवतार जो है, कोई सिंगाचलम में हुआ, कोई साउथ इंडिया में हुआ, कोई सत्ययुग में हुआ, कोई अलग अलग समय पर अलग जगह पर हुआ, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का अवतार, मतलब उन्होंने स्वयं जब जन्म लेना चाहा तो उन्होंने मथुरा मंडल को चुना। और मथुरा मंडल वैसे 84 कोस का है। 84 कोस उसका भौतिक माप है, उसको कोई ऐसे नाप नहीं सकता है, क्योंकि ये अमर्याद भूमि है भगवान का, अमर्याद धाम की अमर्याद भूमि है ये। लेकिन फिर भी भौगोलिक दृष्टि से गिना जाए तो वो 84 कोस है। 84 कोस यानी 168 मील, और 1 मील कुछ 2.2 किलोमीटर का होता है या 1.60 का होता है, कुछ जो भी कुछ है, मील ज़्यादा है किलोमीटर कम है। तो वो मथुरा मंडल जो है उसके अंदर अनंत वन है, अनंत वन है जिसमें भगवान लीला करते हैं। इतने स्थान हैं जहाँ भगवान लीला किया है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि 66 अब्ज स्थान है यहाँ पर, 66 बिलियन प्लेसेस आते हैं। एज पर रूप गोस्वामी, और हर जगह पर कुछ ना कुछ लीला हुई है जो अभी हमको पता नहीं है, ठाकुर जी की अनंत लीला है। तो उन अनंत वनों में से कहते हैं 137 वन, 137 वन जो है भगवान को बड़े प्रिय हैं, स्पेशल हैं वो, और उन 137 वनों में से 12 वन उनको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। वो 12 वन में से 7 वन जमुना जी के पश्चिम दिशा में होते हैं और 5 वन जमुना जी के पूर्व दिशा में होते हैं। हनुमान जी के उस पार हमारा जो हॉस्पिस है उस तरफ 7 वन हैं और हॉस्पिस के उस पार 5 वन हैं। सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये 12 वन भगवान को अति प्रिय हैं। उनमें से भगवान को 12 में से श्री वृंदावन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, जिसमें सबसे पहले भगवान ने रास रचाया, सब जगह रास किया, पूरे पूरे ब्रज में रास किया है, चप्पे चप्पे पर रास किया है, लेकिन शुरुआत किया जो वृंदावन में किया, उसके बाद गोवर्धन में किया। तो ये वृंदावन जो है ये भगवान को बहुत प्रिय है, और उसकी विशेष बात यह है कि इस वृंदावन जो वन है उसके अंदर यमुना जी भी हैं और गिरिराज गोवर्धन पर्वत भी है, और श्री गिरिराज गोवर्धन पर्वत और यमुना जी के बिना ये वृंदावन पूर्ण नहीं होता है। अगर वृंदावन में यमुना जी और गोवर्धन नहीं तो वृंदावन ही नहीं है, वो ऐसा अविभाज्य अंग है उसके। और विशेष बात समझने लायक यह है कि ये वृंदावन के अंदर आज का भौगोलिक वृंदावन तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है आज का, लेकिन पौराणिक वृंदावन जो है उसके अंदर नंदगांव, बरसाना, जावट, यमुना, गोवर्धन सब सम्मिलित है। इतना विशाल है वो, 20 कोस का कहा गया उसको। और इसमें जो वृंदावन में जो बरसाना है वो उसके अंदर एक विशेष भूमि है। गोवर्धन में राधा कुंड, श्याम कुंड धाम जो है वो विश्व में एकदम अति विशेष भूमि है, अति उत्कट, अति प्रेम की भूमि है। लेकिन इस वृंदावन, इस बरसाने का महात्म्य ऐसा है कि जब भगवान अवतार लेते हैं भारतवर्ष में मथुरा मंडल में, तो सारे विश्व के जितने भी ऋषि मुनि भक्त लोग हैं, देवता हैं स्वर्ग लोकों के, वो सब भारतवर्ष में आकर उसकी रज लेते हैं, मथुरा मंडल में आके उनकी रज लेते हैं, भगवान के चरणों की रज अपने सर पर लगाते हैं, उनका अनुनय विनय करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा करने की अभिलाषा रखते हैं, उनका सेवक बनने की तमन्ना रखते हैं। और भगवान सबको अपना आशीर्वाद देते हैं सारे वृंदावन में, सारे मथुरा मंडल में, लेकिन वो स्वयं कृपा प्राप्त करने के लिए बरसाने में आते हैं। उनका भी कृपा का एक स्रोत है जिनसे वो कृपा प्राप्त करते हैं। वो रसराज हैं लेकिन वो भी किसी व्यक्ति से रस प्राप्त करते हैं, रस भक्ति प्राप्त करते हैं। वो भी हम सब लोग आराधना करते हैं, जप करते हैं, अपना साधना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, कोई राम का नाम लेते हैं, कोई कृष्ण का नाम लेते हैं, तो उनकी प्राप्ति करने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण भी साधना करते हैं। हमारे एक आचार्य हुए, उनका नाम है प्रबोधानंद सरस्वती, वृंदावन के बड़े चाहते थे वो। उन्होंने लिखा है अपने राधा सुधानिधि ग्रंथ में कि कृष्ण भगवान साधना क्या करते हैं, वो यमुना किनारे बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, राधा रानी के दो चरणों पर ध्यान करते हैं और मुख से राधा राधा ये दो अक्षरी का मंत्र जो है, द्वय अक्षरी मंत्र, उसका जप करते हैं और उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनका रंग भी कभी सांवला से निकल कर गोरा हो जाता है, जो राधा रानी का रंग है, और राधामय हो जाते हैं। तो हमारा साधन कृष्ण का नाम है और कृष्ण का साधन राधा रानी का नाम है, और कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो दुनिया भर के लोग उनकी चरणों की रज प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्वयं यहाँ के चरणों की, यहाँ की भूमि की रज लेना चाहते हैं, क्योंकि इस भूमि पर राधा रानी चलती हैं, इस भूमि पर राधा रानी विहार करती है, इसलिए भूमि बहुत विशेष है। यहाँ पर केवल कृष्ण नहीं आते हैं, सारे देवता लोग भी आते हैं, शंकर जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, सब लोग पुकारने के लिए आते हैं, यहाँ पर कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं। और विशेष बात यह है कि जो भाग्य आप लोगों को प्राप्त है वो देवताओं को प्राप्त नहीं है, क्योंकि देवता लोग यहाँ पर निवास नहीं कर सकते, एक शिवजी पार्वती छोड़कर यहाँ पर कोई निवास नहीं कर सकता है, सब लोगों को आना है और जाना है, रात को रूम नहीं मिलता है उनको रहने के लिए, लेकिन आप लोग आराम से रात को निवास कर रहे हैं, 10 दिन रहेंगे आप, प्रसाद पाएंगे। देवताओं को भी भगवान का महाप्रसाद बड़ा दुर्लभ है, नहीं प्राप्त होता है। नारद मुनि ने वैकुंठ के हिसाब से 11 साल इंतजार किया था, पता नहीं कितने साल होंगे पृथ्वी के, वो एक महाविष्णु का महाप्रसाद चाहिए था उनको। तो लक्ष्मी जी के पास गए वैकुंठ, बोले उनका महाप्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि नहीं, वो उनका आदेश है, किसी को देना नहीं महाप्रसाद। लेकिन नारद मुनि बड़े प्रामाणिक भक्त हैं, तो वो कहते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ आपको, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक दिन गए, 2 दिन गए, 11 वर्ष तक इंतज़ार किया। तो एक दिन लक्ष्मी जी बड़ी दुखी नज़र आई, थोड़ी सी सेवा करते हुए चेहरा ज़रा उदास नज़र आया। तो विष्णु भगवान पूछते हैं कि इतनी उदास क्यों हो, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक सब सही है। नहीं नहीं बताना पड़ेगा आप थोड़ा चेहरा आपका उदास लगता है आज। वो कहते हैं आपके भक्त नारद मुनि जो है वो 11 साल से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको आपका महाप्रसाद उनको मिल जाए, लेकिन आपने आदेश दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपको सिद्ध नहीं कर रही हूँ कि आप दे दो, लेकिन कारण ये है कि मेरे आपके भक्त नारद मुनि कब से बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो भगवान ने कहा फिर दे दो उनको महाप्रसाद। तो वो महाप्रसाद लेकर नारद मुनि जब पाया तो एकदम भाव विभोर हो गए, वो एकदम होश ही खो बैठे, नाचते 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 कैलाश पर कब पहुंच गए पता नहीं चला उनको। तो कैलाश में शिवजी बोलते हैं अरे नारद मुनि क्या हो गया आपको, ऐसा क्यों नाच रहे हैं आप, इतना भाव विभोर क्यों हो रहे हैं आप, आप नाचते तो हमेशा है लेकिन आज का आपित्य कुछ अलग ही दिखाई पड़ता है। तो होश में आए, बोले कि देखो मुझे विष्णु का महाप्रसाद मिला। तो बोला ऐसे कैसे आप विष्णु का महाप्रसाद मिला, मुझे याद नहीं किया आपने, मैं भी तो आपका भाई हूं, क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र हैं और शिवजी ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो भाई को कैसे भूल सकते हैं आप। थोड़ा इतना भाव विभोर हो गया कुछ याद ही नहीं आया मुझे। तो उनके हाथ खोलकर देखा तो कुछ दाने बचे थे हाथ में, तुरंत शिवजी ने छीन लिए उसको और शिवजी ने खाए उसको, और शिवजी एकदम भाव विभोर हो गए। और वो जब नाचते हैं ना तो प्रलय काल जैसा समय आता है, मतलब लोग डर जाते हैं क्यों नाच रहे भाई आप, जब आप नाचते हो तो प्रलय होता है, तांडव नृत्य। ऐसा तांडव नहीं कर रहे थे लेकिन ऐसा भयंकर नृत्य करने लगे वो भाव विभोर होकर। तो पार्वती हैरान हो गए, बोले महाराज क्या हो रहा है, क्योंकि देवता लोग भाग के आए, क्या हुआ अभी प्रलय होने वाला है क्या। तो उन्होंने आके उनको रोका, महाराज जी स्वामी जी, स्वामी मतलब उनके स्वामी पति, क्या हुआ। उन्होंने कहा हमको महाप्रसाद मिला भगवान का, अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे बारे सोचा नहीं आपने, मुझे बिना याद करे आपने खुद ही खा लिया, ऐसा दुर्लभ है वो महाप्रसाद। ब्रह्मा जी ने भी कोशिश किया था एक बार यहाँ पर आकर महाप्रसाद पाने का, बोलते यमुना जी के किनारे भगवान बैठकर खाना खाते हैं तो बाद में हाथ धोते हैं यमुना जी में जाकर, तो वो मछली बन गए, बोले हाथ से जो निकलेगा ना तो मछली बनकर मैं खा जाऊँगा उस महाप्रसाद। भगवान हाथ धोने गए और देखा पानी में मछली तैर रही है, एक दोना में पानी लिया और जमीन पे हाथ धो लिया। नहीं मिला उनको, सोचो आप, और हम सब लोग यहाँ पर महाप्रसाद पा रहे हैं बरसाना धाम का, कृष्ण भगवान का, राधा रानी का। तो देवताओं को मैं ये इसलिए कह रहा था कि देवताओं को भी यहाँ पर एंट्री मिलती नहीं है और महाप्रसाद नहीं मिलता है, निवास नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रजभूमि है ये, कोई भगवान का ऑफिस नहीं है कि वही अधिकारी लोग मिलते रहे उनको, ये वहाँ पर वो वेकेशन पे आते हैं, सब कुछ छोड़ के आते हैं ना, कोई जो भी मैनेजमेंट करते हैं विष्णु के रूप में सब छोड़कर यहाँ पर आते हैं, अपना पोजीशन भी छोड़कर आते हैं। यहाँ की विशेषता ये कि यहाँ पर भगवान भगवान बनकर नहीं आते, ये ब्रजभूमि की विशेषता है। लेकिन फिर भी वृंदावन धाम में रहते तो वो लोग उनकी उनका प्रेम भक्ति सब करते हैं, लेकिन वो स्वयं अपना प्रेम भक्ति करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये धाम बड़ा अद्भुत है, आप लोग जिस धाम में आए हैं ये मत समझना कि टिकट निकाला मथुरा पहुँचे वो बस में बैठे इधर आ गए एक रूम में चले गए काम पे लग गए, ये तो भारी बहाना है, आंतरिक बहाना जो राधा रानी को कृपा देनी आपको, अनंत जन्मों के पुण्य के बिना यहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है। कितने लोग टिकट निकालते हैं लेकिन कुछ माँ बीमार पड़ जाती है, बच्चा बीमार पड़ता है, छुट्टी सैंक्शन नहीं होती है, टिकट कंफर्म नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो लोग नहीं आ पाते, और आप लोग बिना सायस पहुंच गए, यानी कृपा है आपके ऊपर भगवान की, अनंत जन्मों का पुण्य है आपका, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पर भगवान बाकी जगह तो अलग भाव में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दास बनकर आते हैं भगवान, सब कुछ छोड़ कर आते हैं, सब कुछ भूल कर आते हैं, एक याचक बनकर आते हैं। जैसे हमको यहाँ पर आना चाहिए याचक बनकर, वैसे ही बरसाने में भगवान स्वयं याचक बनकर आते हैं, और उनके पीछे पीछे शिव जी भी आते हैं, फिर सब लोग ब्रह्मा जी भी आते हैं। ये ऐसा धाम है कि हमारे सारे संप्रदाय जितने हैं ना, 12 संप्रदाय, उसमें से 4 कलयुग में प्रचलित हैं, वो 4 हो या 12 हो, जितने भी संप्रदाय, सबके प्रवर्तक ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भगवान के पहले पुत्र हैं वो, सब संप्रदाय अल्टीमेटली ब्रह्मा तक पहुँचते हैं, और फिर ब्रह्मा के बाद कृष्ण। तो ब्रह्मदेव जो है वो इस बरसाने में पत्थर बनकर, पहाड़ बनकर खड़े हैं इधर, टॉप मोस्ट पर्सनालिटी, जो सबसे सर्वोच्च पद पर विराजमान है व्यक्ति, जिसको हम लोग हमारे भाषा में CEO कह सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के सबसे पहले अधिकारी है वो, प्रथम अधिकारी, प्रथम नागरिक। वो यहाँ पर अपने पद में नहीं आए हैं, अपने पोजिशन में एस्कॉर्ट लेकर नहीं आए हैं, यहाँ पर पत्थर बने वो, और हमने देखा है इस पत्थर पर इलाके एक एरिया है जहाँ पर लोग अपना मलमूत्र विसर्जन भी करते हैं, उधर एक एरिया है उसके पीछे। पत्थर बनने का मतलब क्या होता है, लोग आपके ऊपर मलमूत्र भी डाल सकते हैं, थूक भी सकते हैं, गंदगी, बंदर, सब कुछ घूम सकते हैं। इतना निम्न पोजिशन स्थापन किया, क्यों स्थापन किया है, क्यों स्वीकार किया उस पोजिशन को, क्योंकि राधा और कृष्ण के और भक्तों के चरणों की रज जो है वो उनको चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर आए। इसका इतिहास ऐसा है इस धाम का कि ब्रह्मा जी ने सत्ययुग की शुरुआत में 60,000 साल तप किया, ये इसका इतिहास है, कठोर तप किया, फिर भी उनको कोई प्रतिसाद नहीं मिला, फिर काम पे आ गए, अपने ड्यूटी पर आए, निर्माण कार्य किया पृथ्वी का, मतलब ब्रह्मांड का, फिर सत्ययुग के अंत में फिर 60,000 साल तपस्या किया, 120,000 साल तपस्या किया। उसके बाद में भगवान ने दर्शन दिया, पूछा क्या चाहिए, तो कहते हैं कि आपके और आपके भक्तों के चरणों की रज चाहिए सर पर मुझे। तो भगवान कहते हैं जाओ वृषभानुपुरम गत्वा, वृषभानुपुर में जाइए, यहाँ पर राधा रानी का निवास है, वहाँ पर जाके पर्वत बन जाओ। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि पर्वत बनने को क्यों बोल रहे हो, एक कमरा दिला दो ना, मैं रहूँगा जाकर वहाँ पर, मैं जब भी आप आएंगे तो रज लूँगा आपकी, कोई प्रश्न नहीं किया। जिस प्रकार से आपको रज देना है उस प्रकार से दीजिए, जो मुझे बनाना है वो बनाइए, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, कोई किंतु परंतु प्रश्न नहीं है उसके अंदर। हम लोग को अगर बोलेंगे कि आपके भी सेवा बदली होती है, कल से आपको टॉयलेट साफ करना है, बोलो क्यों प्रभु जी, मैं तो इतना कुशल हूँ, मैं गा सकता हूँ, मृदंग बजा सकता हूँ, उधर ऑपरेशन कर सकता हूँ, हम लोग इतने प्रश्न करेंगे, हमारा एक अहंकार होता है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमारा भी एक इच्छा होती है कि अभी मुझे इस कैंप में ये सेवा करनी है, अपना एक एजेंडा होता है ना हम एक आदमी का। ब्रह्मा जी को कहा गया जाके पर्वत बनो, तुरंत जाके पर्वत बन गए वो सारा जो पर्वत पे होता है बाकी लोगों के द्वारा वो सब होने लगा उनके ऊपर। फिर भी कृष्ण और राधा और गोपियों के और ग्वाल बालों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी यहाँ पर पत्थर बन के बैठे हैं, और वो जब कृष्ण बलराम, कृष्ण भगवान और राधा रानी और गोपियाँ सब आते थे, लीला करते थे, तो वो पिघलते थे, उस समय मक्खन की तरह मुलायम बनते थे, पत्थर होता ना, पत्थर हमेशा सख्त होता है, आप नंगे पैर चलेंगे तो आपको थोड़ा सा सख्ती की वेदना होगी पैर में, बहुत देर चलेंगे तो पैर दुखने लगेगा आपका, लेकिन भगवान के चरण कमल लगते ही जो भी मक्खन की तरह मुलायम है ये भी भाव विभोर होकर मक्खन की तरह मुलायम होते थे, वो भगवान के चरण चिन्ह उस पर निकलते थे। ऐसे हमारे ब्रह्मा जी हैं। इसी वृंदावन धाम में नंदगांव भी है, उसमें शंकर भगवान पर्वत बने हुए हैं, विष्णु भी यहाँ पर पर्वत बने हुए हैं, गोवर्धन पर्वत कौन है, विष्णु भगवान गोवर्धन पर्वत बने हैं, तीनों देवता जो ब्रह्मांड के हैं वो भगवान के और भगवान के राधा रानी के चरणों के रज चाहते हैं। तो कोई साधारण जगह नहीं है जिस पर हम लोग आए हैं, हमारे प्रभुपाद जी के गुरु जी के गुरु थे गौर किशोर बाबा जी महाराज, वो एक बार दावानल कुंड पे वृंदावन में कथा कर रहे थे, तो लोग ऐसे मट्टी में बैठे हुए थे, कथा समाप्त हुई तो उठ गए वो सब लोग ऐसे ऐसे करके धूल को झड़कने लगे। तो गौर किशोर बाबा जी बोले, यार मूर्ख लोग हो आप, इस धूल को झटक रहे हो, इस धूल की एक एक कण को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते, उनको प्राप्त नहीं होता है, और तुम्हारे शरीर पे धूल लदी हुई है, तुम उसको झटक रहे हो। एक एक कण के अंदर राधा कृष्ण की भक्ति का रहस्य, अनंत रहस्य छुपा हुआ है इसके अंदर। एक रज के अंदर इतनी शक्ति है कि आपको वो राधा और कृष्ण के चरणों की भक्ति दिला सकती है, इतनी महिमा है इस रज की, इसको प्राप्त करने सब लोग तरसते हैं। ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा शुक नारद, नारद शुक और शेष, ये सब लोग तरसते हैं लेकिन नहीं प्राप्त होता है उनको। इतना गीत गाते हैं, गुण गाते हैं, कथा करते हैं, फिर भी उनको भी इनके चरणों की रज और महाप्रसाद प्राप्त नहीं होता है। ऐसी भूमि है ये, अद्भुत भूमि है। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे होता है, परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम गोलोकेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर अपना सारा चीज खो कर आते हैं। मतलब वो तो पुरुष है ना, पुरुषोत्तम है वो, लेकिन वो सखी बनकर यहाँ पर आते हैं। एक याचक होता है ना, याचक, सच्चा याचक जो है ना, उसको कोई संकोच नहीं होता किस चीज का, कुछ भी कहा जाए मंजूर है। जो सही याचक होता है वो कोई प्रश्न किंतु परंतु करता नहीं, भगवती भिक्षान देही बोलेगा तो ऐसा नहीं बोलेगा भगवती लड्डू देही, भगवती पराठा देही, आज पराठा खाने की इच्छा है वो देना भिक्षा में, ऐसा नहीं, भगवती भिक्षाम देही, और भिक्षा में सूखा रूखा जो भी आएगा उसको स्वीकार करके खाएगा वो। मैया आज तुमने रोटी पर सब्जी नहीं दिया, मक्खन नहीं लगाया, चुपड़ा नहीं उसको घी से, ऐसा नहीं बोलेगा वो। सच्चा याचक होता है वो, जो मिलेगा वो लेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लेगा। उस दिन तीन बार आवाज़ दिया तो नियम होता है, तीन बार आवाज़ देने के बाद नहीं मिला तो निकल जाना है आपको। अरे मैया ने आज रोज देती है, वो आज दिया नहीं, ऐसा बोलना नहीं है। याचक मतलब वो नम्र होता है, उसको कोई अपना अहंकार नहीं होता है कि मैं जो कुछ चाहिए, मेरी आज की इच्छा ऐसी है। तो भगवान भी इस भाव में यहाँ पर आते हैं, और हमें भी उसी भाव में आना चाहिए, एक याचक बन कर आना चाहिए, क्योंकि ये परम परम कृपा वाली भूमि है। अगर आप जीवन भर कृष्ण की भक्ति करते हो तो हो सकता है कृष्ण आपको प्रतिसाद दे ही नहीं। कृष्ण बहुत अनन्य भक्ति चाहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तु माम, जो उनके अनन्य चिंतन करते हैं, किसी और का नहीं करते, केवल उनका ही करते हैं, वो भी 100% करते हैं, वो उनको अगर कन्विंस हो गए वो, तो फिर वो कुछ कृपा आप पर करेंगे, लेकिन बहुत कठिन काम है वो। ऐसा कहा है कि योगियों को भी अनंत ध्यान करने के बाद भी वो ध्यान में पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे ये गारंटी नहीं है। क्या है वो योगी फिर ध्यान गम्यम, योगियों के भी ध्यान में नहीं मिल सकते वो, इतने दुर्लभ है भगवान। लेकिन वही दुर्लभ भगवान जब राधा रानी आपकी सिफारिश करती है तुरंत आपको स्वीकार कर लेते हैं, इतना उनका शक्ति है राधा रानी को। और किसी पतित जीव को भी वो बोलेगी नहीं नहीं मुझे अच्छा लगता है जीव, ये मेरे शरण में आया है, इन पर कृपा करो, वो तुरंत कृपा कर लेते हैं। परम दयालु है राधा रानी, बहुत भोली है, सरल हृदय है, कठिन नहीं है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी कृपा जो है वो कृष्ण की कृपा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त करने पर कृष्ण कृपा प्राप्त होती है, ये माध्यम है। तो उस जगह पर हम आए हैं, इसलिए हमको अभी, आप लोग पहली बार आए, कुछ लोग दो तीन बार आए होंगे, सब लोगों को यहाँ पर जो निवास मिल रहा है उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। हो सकता है हम बार बार आते हैं, हर बार आते हैं तो हमको लगता है ठीक है आते रहते हो, क्या इसमें क्या बड़ी बात है, हर महीने आता हूँ, हर दिन आता हूँ, हर महीने आता हूँ, लेकिन वो अनन्य कृपा है उनकी, बुलाते हैं और सेवा देते हैं, निवास देते हैं, उसकी हवा ले सकते हैं, जल पीते हैं, यहाँ का भोजन करते हैं, दर्शन करते हैं आँखों से, हाँ यहाँ के वातावरण को त्वचा में अनुभव करते हैं, दिमाग से अनुभव करते हैं, सुनते हैं कान से, कितनी बड़ी प्राप्ति है ये। जिस धाम में देवता लोग भी नहीं आकर रह सकते, हम लोग उसमें आते हैं बार बार, हमको सेवा देते हैं वो। आना जाना एक बात है, सेवा देना दूसरी बात है, जिसको पसंद करते हैं उसको सेवा देते हैं ना, सबके हाथ से नहीं खाते हैं, तो बीवी के हाथ से खाएंगे, माँ के हाथ से खाएंगे, बहन के हाथ से खाएंगे, भाई के घर में खाएंगे, सब जगह नहीं खाते हैं। वैसे ही वो हम पर प्रेम करते हैं, इसलिए हमको बुलाते हैं और सेवा देते हैं, हमसे हाथ से सेवा करते हैं, और खास करके उनकी सेवा के साथ में उनके जो प्रिय है उनकी सेवा देते हैं, जब उनकी प्रियों की सेवा देते ना, मतलब वो हमको चाहते हैं। तो उनके पास बहुत लोग हैं, एक देवता को बताएंगे, देवता आके सेवा करेंगे उनकी। हमको क्यों बुला रहे हैं, हम तो पतित जीव हैं पृथ्वी के, लेकिन फिर भी बुला रही हैं और सेवा दे रही हैं। ये अनन्य कृपा कहते हैं उसको, जिसके लिए हम लायक नहीं है, लेकिन वो हमको वो योग्यता भी दे रहे हैं और सेवा भी दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर रहते हुए बड़ा कृतज्ञ रहना चाहिए। तो ये श्री जी का धाम है, यहाँ पर सारे लोग पुकारने के लिए आते हैं, सब लोग टेर लगाते हैं, यहाँ पर आवाज़ देते हैं, बार बार पुकारते हैं। हमसे दीन न कोई इस जग में, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन न कोई जग में, राधे किशोरी दया करो। सब पुकारते हैं यहाँ पर, हमको भी पुकारना चाहिए। चाहे आप नर्स के रूप में सेवा कर रहे हो, भोजन खिला रहे हो किसी को इंजेक्शन लगा रहे हो, मन में राधा रानी को पुकारते रहो, क्योंकि वही आपको सेवा दे रही है। और जब इनको प्रसन्न करेंगे, आप राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे। ऐसा ये दिव्य धाम हम सबको प्राप्त हुआ है, इसलिए हमको निरंतर हृदय में इसके लिए धन्यवाद देते रहना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करते रहनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा इस धाम का, थोड़ी सी कहानी बताऊंगा। तीन महासतियाँ थी वैकुंठ में, और वो एक बार वैकुंठ में विष्णु का दर्शन करने आए। तो वहाँ पर वो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, कुमार, उनका नाम है सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ऐसे चार कुमार भाई हैं वो, ब्रह्मा के पुत्र हैं वो। लेकिन उन्होंने सोचा हमको विवाह वाह नहीं करना है, हमको सन्यस्त होना है, विरक्त रहना है। और इतना शक्ति थी उनके अंदर, वो करोड़ों वर्ष के पुराने उम्र थी उनकी, लेकिन अपने योग बल से उन्होंने अपने शरीर को 4 साल का ही बना के रखा था, उसके आगे उनके शरीर को बढ़ने नहीं दिया, ताकि काम वासना, दुनिया के भोग करने की वासना उत्पन्न ही ना हो। लेकिन 4 वर्ष की आयु में थे, लेकिन करोड़ों वर्ष की उनकी आयु थी, और वो भी वहाँ पर थे। तो ये तीन महासतियाँ वहाँ पहुँची, तो उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया, उनको समझा नहीं कि ये कौन है। नहीं, चार नंगे बालक घूम रहे तो कौन प्रणाम करेगा उसको। तो उनको शाप प्राप्त हुआ कि आप तीनों पृथ्वी पर जाओगी और वहां जन्म देना पड़ेगा आपको। तो उतने में भाव विष्णु वहां पर आए, उन्होंने कहा बुरा मत मानना शाप, ये मेरी योजना है, मेरी लीला है, मैं चाहता हूं कि आपको पृथ्वी पर जाकर कुछ सेवा करनी है। तो क्या सेवा करनी है कि मेरी तीन महाशक्तियां हैं, जो महासती भी हैं, तीन महाशक्तियां हैं, उनकी आप माता बनोगे, आपके द्वारा उनका जन्म होगा, पृथ्वी पर अवतार लेंगी वो। वो कौन है, तो उसमें से फिर वो इतनी दुखी नहीं हुई, भाई पृथ्वी पर जन्म लिया उन्होंने। उसमें से एक बनी पार्वती की माता और एक बनी सीता की माता और एक बनी राधा रानी की माता। तो राधा रानी की माता जो थी वो, उसका पहले जन्म में नाम था कलावती, और कलावती का विवाह संतों ने सुचंद्र के साथ किया। बड़े सद्गुण संपन्न भक्त थे भगवान के, वो राजा भी थे। तो सुचंद्र कलावती का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर 12,000 वर्ष तप किया, केवल पेड़ से गिरने वाले सूखे पत्ते खाकर तप किया, कुटू के आटे का लड्डू और साबूदाना की खिचड़ी खाकर नहीं किया, कठोर तप किया। तो पेड़ पे गिरेगा पेड़ से, वो सूखा पत्ता खाकर तप किया। तो 12,000 वर्ष तप करने के बाद में उनको ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी बोले वर मांगो, तो सुचंद्र बोले मुझे मोक्ष दे दो, मुझे मोक्ष चाहिए। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। तो कलावती को बहुत क्रोध आया, अरे मेरे होते हुए इनको मोक्ष दे सकते आप, इनको मोक्ष देंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। तो क्रोध किया, तो ब्रह्मा जी डर गए। क्यों डरे? क्योंकि वो महासती है, महासती को ब्रह्मा भी डरते हैं, शिव जी भी डरते हैं। महासती का मतलब क्या है, जो जिनका पतिव्रता होने का जो बल है वो इतना शक्तिशाली है। पतिव्रता स्त्री से ब्रह्मा और शिव भी डरते हैं, यमराज भी डरते हैं। पतिव्रत्य जो है ना, चेस्टिटी, इतना महान शक्ति है, इसलिए हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। मनुष्य बनने के बाद अगर आप स्त्री बन गए, मनुष्य का जीवन प्राप्त किया, तो एक ही पति बस, 50 पति नहीं करना है, ये अच्छा लगा छोड़ दिया, उस दूसरा किया, तीसरा किया, वो जानवर लोग करते हैं, हर रोज़ नया पति, हर रोज़ नई पत्नी, और आगे की याद भी नहीं कि पहला कौन था और आगे कौन था। आप कुत्ती को पूछे कि इसको बच्चों का बाप कौन है, तो उसको पता नहीं रहेगा, उसको याद भी नहीं रहेगा, ऐसे जानवर का जीवन होता है। जो दिखेगा वो पति, ये जानवर की संस्कृति है। क्योंकि मनुष्य जीवन में स्त्री बनने के बाद में एक विवाह करना है और एक पति से अंत तक एक निष्ठ रहना है। शादी में हम लोग वही संकल्प और वही वचन लेते हैं, शपथ लेते हैं, एक पति एक पतिव्रत, इसलिए उसको पतिव्रता कहा गया है। जो पति एक पति का व्रत लेकर जीवन जीती है, उसकी सारी श्रद्धा निष्ठा जो है एक पुरुष के प्रति है। वैसी सीता देवी थी, इतना तेज था कि रावण छू नहीं सका उसको, केवल मनाते रहा उसको लेकिन छू नहीं सका उसको, इतनी शक्ति है। पार्वती का भी सतीत्व ऐसा ही है। शिवजी पे इतना श्रद्धा और इतना एकनिष्ठ थी वो कि पिता ने कभी एक बार पति का अपमान किया तो वहीं शरीर त्याग दिया उसने, वो सहन नहीं कर सकती, मेरे पति का अपमान छोटा करे या बड़ा करे, आई कैन नॉट टॉलरेट, शरीर ही त्याग दिया उसने। दोबारा जन्म लिया और दोबारा तपस्या किया और फिर शिव जी से विवाह किया। वैसे लक्ष्मी नारायण, वैसे लक्ष्मी जी की श्रद्धा, वैसे रुक्मिणी की श्रद्धा, वैसे कलावती का पातिव्रत था। ब्रह्मा जी डर गए, उन्होंने कहा सॉरी सॉरी, क्या करना चाहिए, एक काम कीजिए, आप हम लोग ना, आप दोनों हमारे धाम में रहिए, ब्रह्मा लोक में रहिए, और यथावकाश भगवान की शक्ति जो है वो आपके गोद में जन्म लेगी, तब आप पृथ्वी पर आना, भगवान की शक्ति को बोली बेटी के रूप में पालना, और फिर वो जन्म जब आपका समाप्त होगा तब आप फिर मोक्ष दोनों प्राप्त करना साथ में। ऐसे अपने आप को बचा लिया ये सब एडजस्ट करके उन्होंने, तो महासती का शाप मिलता तो ब्रह्मा जी बहुत डर जाते। तो फिर अगले जन्म में ये सुचंद्र बने वृषभानु महाराज, महीभानु महाराज के 9 पुत्र थे, उसमें से बीच वाले 5वें नंबर के पुत्र वृषभानु महाराज थे, ये सूर्य के अवतार भी थे। और राधा रानी ने कलावती जो है वो बनी कीर्तिदा, जो इंदुसेन और मुखाराई, मुखारा देवी के पुत्री के रूप में जन्म हुआ था। कलावती देवी जो है वो कीर्तिदा, उनके दो भाई और एक, दो बहनें और एक भाई, यानी कि 3 बहनें और एक भाई था उनका परिवार में, तो कीर्तिदा के नाम में जन्म लिया कलावती ने अगले जन्म में। और वृषभानु महाराज का विवाह जो है वो कीर्तिदा के साथ हुआ, और कीर्तिदा और वृषभानु महाराज विवाह होने के बाद कई साल तक उनको संतान नहीं हुई, नंद महाराज को भी नहीं हुई। नंद महाराज और ये वृषभानु महाराज बड़े अच्छे मित्र थे, नंद महाराज नंदगांव में रहते थे, वृषभानु महाराज बरसाने में रहते थे। तो फिर उन्होंने डिस्कस किया कि भी संतान नहीं हो रही है, बहुत समय हो चुका है, तो हम जमुना किनारे जाके रहेंगे। तो ये गए रावल गांव में जमुना किनारे रहने के लिए, और नंद महाराज गए गोकुल में, वो भी जमुना किनारे है। तो गोकुल में उनको कृष्ण की प्राप्ति हुई, बड़ी लंबी कथा है वो, और राधा रानी की प्राप्ति वृषभानु महाराज को रावल में हुई, वो भी जमुना जी के पार होके कृष्ण आए, और जमुना जी में ही राधा रानी प्राप्त हुई। फिर कुछ समय बाद दोनों लौट के आए, वो बरसाने लौट के आए और ये नंदगांव लौट के आए। इस प्रकार से ये गांव जो है, ये बरसाना धाम जो है, ये राधा रानी का घर है, निज घर, स्वयं निज धाम है ये, यहाँ पर पर्वत पर उनका घर है, वृषभानु महाराज वहाँ पर रहते हैं, कीर्ति मैया वृषभानु महाराज राजा रानी अपनी राजकन्या राधा रानी के साथ में यहाँ निवास करते हैं, ये उनका घर है। उनके घर में और 2 जन हैं, बड़े भाई श्रीदामा हैं जो भगवान के परम सखा हैं, और छोटी बहन अनंग मंजरी है, ये सब लोग वहाँ निवास करते हैं, आज भी निवास करते हैं, इनका चिरंतन घर है, पहाड़ पर रहते हैं, भानुगढ़ कहते हैं उस पहाड़ को। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर पर्वत बन के अपना आसन मतलब ग्रहण किया है, प्रतिष्ठापना आपने की है, तो ब्रह्मा जी के 4 सर हैं तो पर्वत भी 4 हैं छोटे से, वर्षाणु कहते हैं उसको, वर्षाणु यानी जिस गांव में बहुत सुंदर सुंदर पर्वत की चोटियां हैं उसको वर्षाणु कहते हैं। शांडिल्य मुनि उसको बृहत सानु कहते हैं, सानु यानी बहुत सुंदर है, पर्वत की चोटियां हैं। चढ़ने के लिए इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन पर्वत तो है। और चार चीज़ें हैं इस जगह पर, खोर, खिरक, गिरी, गहवर, ये चार चीज़ बरसाने की विशेषता है। खोर का मतलब क्या है कि जलाशय, यहाँ पर बहुत जलाशय हैं, किज्जदा कुंड है, जल महल है, भानुखर कहते हैं उसको, पीली पोखर है, और वृषभानु कुंड है, और दोनी कुंड है, बिहार कुंड है, गैबर कुंड है, कई कुंड है यहाँ पर, बहुत प्रकार के कुंड। खोर, हाँ एक सॉरी गलत बताया मैंने आपको, खोर यानी रास्ता, सॉरी खोर का मतलब होता है रास्ता। और एक है सांकरी कोर यानी छोटी सी गली, एक है रंगीली गली, एक है सांकरी कोर, ऐसे बहुत सुंदर रास्ते हैं जहाँ पर भगवान लीला करते हैं। और खिरक यानी जलाशय, जल के अनेक कुंड है यहाँ पर। तो खोर हो गया, खिरक हो गया, और गिरी, चार प्रकार के पर्वत हैं, भानुगढ़, विलासगढ़, दानगढ़ और मानगढ़। भानुगढ़ में उनका निवास है, घर है उनका, दानगढ़ में दान लीला करते हैं, मानगढ़ में राधा रानी मान करती हैं, और विलासगढ़ पे आनंद की लीलाएं करते हैं। और चौथी विशेष चीज़ जो है ना, वो उसका नाम है गहवर। खोर, खिरक, गिरी, गहवर, ये गहवर बहुत विशेष चीज़ है, मतलब गहवर वन उसको कहते हैं। मराठी में भी गहवर वर्ड का अर्थ, शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। जब भावना से हम विभोर हो जाते हैं ना, भाव विभोर हो जाते हैं, उत्कट भावना आती है ना, उसको गहवर कहते हैं। और वही अर्थ हिंदी में भी है, गहवर। तो गहवर वन, ये राधा रानी का घर जो है ना, वहाँ से शुरू होता है वन, और चित्रा सखी का गांव उसके आगे आता है, चिकसोली, चिकित्सापुर कहते हैं उसको, चिकित्सा वन, उसके अंत तक ये वन है, उसको गहवर वन कहते हैं। और उसकी विशेषता यह है कि कृष्ण के आनंद के लिए, लीलाओं का आनंद बढ़ाने के लिए राधा रानी ने इस वन को अपने हाथ से बनाया है। कॉन्ट्रैक्ट देकर हम बना दें ना कभी, ये हरियाली बनाओ यहाँ पर बगीचा बनाओ, यहाँ पर ये फूलों का बनाओ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, उन्होंने खुद के हाथ से पौधे, वेलियाँ, पेड़ बोए हैं यहाँ पर, और खुद के हाथ से उसका सिंचन भी किया है, और इतना सुंदर सघन वृक्षावली बनाई है, फल फूल वेलियाँ, हर प्रकार का कलर, हर प्रकार का रंग गंध, प्रकार के फूल और फल यहाँ पर उन्होंने स्थापन किए हैं। और बचपन में इनके द्वारा निर्माण किया वो गहरव वन जो है, इसके वेलियों का शादी वो दोनों मिलकर वृक्षों से करते थे, ऐसा भी लीला है इसका। वो सब कमानों से बना हुआ है, फूलों की कमान, उसको वितान कहते हैं, पुष्प वितान, हर चीज़ आज शेप में है यहाँ पर गहवर वन में। और वहाँ पर राधा रानी और कृष्ण भगवान अपनी अंतरंग लीला वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर कोई राक्षस नहीं आता है, बाकी सब जगह वृंदावन में राक्षस आए हैं, लेकिन बरसाने में कोई राक्षस नहीं आया है। कहीं पढ़ा है क्या आपने? नहीं आया है। राधा रानी के प्रताप के और राधा रानी के भय से कंस यहाँ प्रवेश नहीं कर पाया, एक बार प्रवेश किया था तो वो स्त्री बन गया था, और 6 महीने यहाँ पर स्त्री बनकर उसने कंडे लिपे थे। कंस जिसके पूरी मथुरा मंडल भयभीत था उससे, उसने कृष्ण को मारने के लिए ढूंढे ढूंढे यहाँ पर आया तो वो कन्या बन गया था। राधा रानी के क्षेत्र के प्रभाव से उसके क्षेत्र में एंट्री किया तो वो पुरुष का स्त्री बन गया, और रोता रहा गिड़गिड़ाता रहा, गोपियों के चरणों में गिरता रहा। 6 महीने तक उन्होंने तालियां पीट पीट कर हंस हंस कर उनसे गोबर के कंडे लिपवाए। फिर 6 महीने के बाद राधा रानी के चरणों में गिरा। वो महान शक्तिशाली दिग्विजयी कंस था, वो भयंकर राक्षसों को वश में किया था उसने, ऐसे आराम से घूमता था सबको परास्त करते हुए, वो कंस यहाँ पर आके स्त्री बन गया। फिर राधा रानी ने उसको डांटा, वो गिड़गिड़ाया, चरणों में गिरा, माफी मांगने लगा। तो राधा रानी को पिताजी ने कहा माफ कर दो इसको, चलो ठीक है छोड़ दो इसको। तो राधा रानी ने उंगली उठाकर कहा दोबारा आओगे तो परमानेंट कन्या बन जाओगे, जाओ इस कुंड में छलांग लगा दो, स्नान करो। तो वैसे छलांग लगाया और गीले से जब दोबारा शरीर प्राप्त किया पुरुष का, तो कहा ना स्नान करो फिर दोबारा पुरुष बन जाओगे। तुरंत छलांग लगाया तो पुरुष बन गया, तो गीला पूरा वस्त्र था उसका, वैसे ही मथुरा तक भागा वो, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, नहीं कहीं माइंड चेंज हो गया तो भाग गया, दोबारा नहीं लौट के आया, ना नंदगांव में कोई आया, ना बरसाने में कोई आया, ना जावट में कोई आया, बाकी सब जगह आया। यहाँ पे 4 किलोमीटर पे वो है खदीर वन, उसमें भी बकासुर आया था, यहाँ पर नहीं आया। ऐसा महारानी का प्रताप है, सब ग्वाल बाल गौरव करते हैं उनका। गर्ग संहिता में कथा आती है विस्मय लीला, उसमें सभी बड़े बड़े ग्वाल बाल जो थे नंद बाबा जैसे बुजुर्ग, वो सब बैठ कर चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे वृषभानु की लली जो है महाप्रतापी है, इसके वजह से आप सब लोग आराम से जी रहे हो, कोई राक्षस नहीं आ रहा यहाँ पर, इसके भय से। और ये कथा बताई उन्होंने कि क्या इस कौन से भय से, तो बताई पूरी कथा कि कंस ऐसा आदमी भी यहाँ पर भय से परागदा हो गया, भाग गया, इतनी प्रभावी है वो। कृष्ण को मारने के लिए हर जगह आता था और कृष्ण के उसके योद्धा सब जगह लड़ते थे उसके साथ में, लेकिन राधा रानी के सामने भी आने की इसकी हिम्मत नहीं हुई। बोलो तो बताओ कौन शक्तिशाली ज्यादा है, कृष्ण की राधा रानी? कृष्ण को ढूंढे ढूंढे आते थे, भले मर जाते थे लेकिन सामने आकर ललकारने की हिम्मत तो करते थे और मारने का प्रयास भी करते थे, युद्ध भी करते थे उसके साथ में बहुत लंबे समय तक, लेकिन राधा रानी के सामने खड़े होने के लिए भी नहीं आए वो, इतनी शक्तिशाली है वो। तो दिखने में बड़ी कोमल हृदय है, बहुत दयालु है, भोली भाली है, सरल हृदय है, लेकिन शक्तिशाली भी है, लेकिन कृपा करने में बहुत निपुण है, कृपा निधान कृपा सागर है वो। तो इस तरह से इसका जन्म हुआ, यहाँ पर आए और यहाँ पर ही उनका निवास अभी भी है, ये उनका चिरंतन धाम है। दूसरी ऐसी कथा है, इस धाम का इतिहास ऐसा है कि एक दिलीप राजा हुए, उनका वर्णन भागवत में पुराणों में आता है। तो दिलीप राजा के हाथ से एक बार गाय की हत्या हो गई, क्या गाय का हत्या हो गई, तो दिलीप राजा को पुत्री ही प्राप्ति नहीं हुई, नहीं सॉरी वो ऐसा हुआ कि दिलीप राजा जब स्वर्ग में गए थे तो उन्होंने कामधेनु को वंदन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो कामधेनु को कुछ बुरा नहीं लगा, बट कामधेनु भगवान के कामधेनु हैं, भगवान की गाय है वो, तो उसको प्रणाम न करने की वजह से दिलीप राजा को शाप लगा, जो उसको पता भी नहीं चला नहीं क्या हुआ, लेकिन हुआ ये कि उसको संतान ही नहीं हुई। तो वशिष्ठ मुनि को उन्होंने बुलाया, वो कहा महाराज हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वशिष्ठ मुनि ध्यान लगाया और देखा कि इसने गाय का अपराध किया है, तो बोलते हैं आपने गाय का अपराध किया इसलिए आपको पुत्र नहीं हो रहा है, वो क्या करना चाहिए बताइए। बोले मेरे पास उस कामधेनु की कन्या जो है नंदिनी, वो मेरे आश्रम में है, उसकी आप सेवा करो। वैसे वो गऊ के भक्त थे, बड़े सेवा करते थे, लेकिन उनको पता नहीं चला कि उन्हें वंदन करने को भूल गए वो। तो नंदिनी का सेवा किया तभी जाकर उसके शाप मुक्ति हुई, तभी उसको पुत्र प्राप्ति हुई। और फिर आगे जाकर उनके वंश में प्रभु रामचंद्र ने जन्म लिया, फिर प्रभु रामचंद्र मतलब पहले रघु हुए उस वंश में, वो कौन सा वंश है, सूर्य वंश है, एक चंद्रवंश है सूर्यवंश में, चंद्रवंश में राधा रानी का जन्म हुआ है और सूर्यवंश में सॉरी चंद्रवंश में कृष्ण का जन्म हुआ है और सूर्यवंश में राधा रानी का जन्म हुआ है। तो रघु राजा हुए पहले, जिसको बोलते हैं रघुकुल रघुवंश, तो उस वंश में रामचंद्र का भगवान का अवतार हुआ। फिर उसके बाद में अभय कर्ण हुए उसके अंदर, और उसके बाद में रसंग राजा हुए इस लाइन में, और उस रसंग राजा ने बरसाने का राज्य स्थापन किया, पहले सबसे राज्य बनाया, जैसे हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बनाया ना एक जगह नाम दिया महाराष्ट्र, वैसे रसंग राजा ने यहाँ पर आकर महा बरसाना राज्य बसाया, और उनके वंश में फिर वृषभानु महाराज ने जन्म लिया और उनके वंश में फिर राजा रानी का जन्म हुआ, ये भी उसका एक इतिहास है। तो इसको सभी ऋषियों ने इस धाम का गौरव किया है क्योंकि यहाँ राधा रानी निवास करती है, राधा और कृष्ण यहाँ पर, क्योंकि अपने प्रभाव से राधा रानी ने यहाँ पर सब राक्षसों को दूर रखा है, इसलिए कारण क्या उसका कि अपनी मोस्ट सबसे अंतरंग लीला जो है हृदयंगम सबसे उत्कट प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल लीला जो है वो यहाँ पर राधा और कृष्ण करते हैं, संपन्न करते हैं उसको, इसलिए ब्रह्मा जी पिघलते हैं, कितनी उत्कट लीलाएं, हाँ उसमें हर प्रकार का भाव है, कभी चिढ़ाना है, कभी कुछ मजाक करना है, कभी कुछ प्रेम का व्यक्त करना है, इतना उत्कट धाम है कि यहाँ पर बैठे बैठे एक दूसरे को देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू बहते हैं और उसके कुंड बन जाते हैं, यहाँ प्रेम सरोवर है, आगे प्रेम विवल कुंड है, आगे मान सरोवर है, सब जितने भी अलग अलग कुंड है वो राधा रानी के कृष्ण के आंखों से आंसू निकले हुए प्रेम से उसके बने हुए हैं। हम लोग रोएंगे तो कितना रोएंगे। तो मेरी दादी गुजर गई थी ना, मुझे अभी भी याद है, मैं 10 साल का था, मैं बहुत रोया, लेकिन आधा घंटे के बाद रोना ही बंद हो गया। आई एम स्टिल वंडरिंग, मुझे बहुत दुख था मन में कि मेरी दादी चली गई, लेकिन आंसू ही निकलने लगे, रो रहा था कि आंसू खत्म हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता उस समय, मुझे अभी भी चिंतन मुझे आता है कि उस समय भी छोटे उम्र में मैं विचार करता रहा कि अरे मुझे दुख तो हो रहा है लेकिन आंसू क्यों निकल रहे। ऐसी हमारी स्थिति है, हमारा दुख भी इतना अधूरा है, इतना अपरिपूर्ण है, लेकिन इनका प्रेम इतना अगाध है कि जब आंसू निकलते हैं तो उसकी नदियां बहती है, उसके सरोवर बन जाते हैं। कभी क्रोध के आंसू है, कभी मान के आंसू है, कभी प्रेम के आंसू है, कभी हंसी हास प्रयास के आंसू है। ऐसा ही दिव्य धाम है, इसको समझना मुश्किल है। हम कहते जा सकते हैं कुछ पढ़कर आपको, लेकिन हमें भी समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि अचिंत धाम है ये। इतना जरूर समझते हैं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कुछ अद्भुत चीज़ है, इतना तो समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग आए हैं वो बड़ी अद्भुत हमारी भाग्य है हमारा, इसलिए हम लोग आए हैं, इतना समझ सकते हैं। हर चीज़ समझ में आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इतना भी समझ में आया कि हमारा परम भाग्य है इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे। और यहाँ पर सेवा करने का मौका मिला तो जो भी हमने सीखा पढ़ाई बचपन में किया उसकी परिपूर्णता हो गई। जब कोई स्त्री ने कोई औरतों ने रोटी बेलना अच्छा सीखा था अपने घर में माँ से अपने, तो वो सीखना रोटी बेलना भी परिपूर्ण हो गया। यहाँ पर आके रोटी बेला तो परिपूर्ण हो गया। और आपने कुछ और कुछ कला सीखा, कुछ आपको पढ़ाई लिखाई हो रही है आपकी, उसके अनुसार आपको सेवा मिल रही है, तो वो भी परफेक्ट हो गया आपका। कोई मैनेजर है यहाँ पर आके मैनेजमेंट कर रहा है कैंप का, तो वो भी परफेक्ट हो गया मैनेजमेंट उसका। हर प्रकार की कला जो आपको प्राप्त हो रही है भगवान की दया से, वो यहाँ पर आके आपने उसका अमल किया तो वो परफेक्ट हो गया। बाहर गा के वो अमल किया तो उसका रुपया मिलेगा आपको, पगार मिलेगा शरीर को चलाने के लिए। यहाँ पर आकर वही कला आपने अर्पण किया तो आप शरीर के बंधन से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होकर भगवत धाम चले जाएंगे। एक बार भी यहाँ पर व्यक्ति आता है ना, एक बार भी अगर सही भाव से आया वो, ऐसा नहीं करे चलो घूम के आते देखते चला गया, यहाँ पर क्या है वहाँ पर क्या है, जाए ऊपर जाके देखते ऊपर क्या है, ये भाव से नहीं, कुतूहल से नहीं, प्रेम से और भाव से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें है, एक है भक्ति प्रेम और तीसरा है कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद की भावना से यहाँ पर कोई सेवा करता है। गर्व से नहीं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इसलिए मुझे बुलाया गया यहाँ पर, मेरे बिना ऑपरेशन नहीं होते, मेरे बिना खाना नहीं बनता है, मेरे बिना मैनेजमेंट नहीं होता है, मेरे बिना बस नहीं चलती है, मैं सैंक्शन करूँगा तो पेट्रोल आता है फिर बस चलती है, ऐसा अगर लगेगा तो अलग बात है। लेकिन जो भी सेवा मिली है अगर आप धन्यवाद भावना में डूबे हुए हो, दिल में आपका इतना कृतज्ञता है, उस भाव से यहाँ पर एक बार भी आएगा ना आदमी, तो शास्त्र में लिखा है कि उसका गौलोक धाम जाना निश्चित है। कब जाएगा वो दूसरी बात है, लेकिन वीज़ा हो गया आपका गौलोक धाम का। एक बार आने से यहाँ पर सही भावना से आने से आपके पुराने कितने जन्मों के कितने पाप होंगे संचित होगा आपका, वो सब नष्ट हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है। जैसे ऑपरेशन टेबल पे आप गए और आप बेहोश हो गए, उसके बाद आपको पता चलता नहीं है क्या खोला जा रहा है और क्या निकाल के फेंका जा रहा है, आपको पता नहीं चलता है, आप तो बेहोश पड़े हो। और ऑपरेशन ख़त्म होता है पूरा वापस सही कर देते हैं उसको, एक लाइन रहता है यहाँ पर टाका लगाते हैं, लेकिन बहुत घंटे के बाद में होश आता है, फिर कुछ कुछ दुखने लगता है, फिर थोड़ा दुखता है, बोलते ठीक हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि आपका ये अपेंडिक्स हमने निकाल दिया, वो सड़ा हुआ था निकाल दिया। अगर वही अपेंडिक्स अगर आपका होश में होते हुए निकाला तो क्या होगा वो निकलेगा नहीं, इतना नाच करेंगे डॉक्टर क्या निकालेगा उसको, कहाँ से पकड़ेगा उसको। तो वैसे धाम में आने के बाद में इतनी कृपा है भगवान की कि आपका इतना अंदर से साफ सफाई हो रही है कि हमको समझ में नहीं आता है। नहीं तो हम साफ सफाई करते हैं ना घर की, कभी तो नाक और मुंह में धूल जाती है, बहुत खांसी छींक आती है और परेशान होते हैं हम लोग, कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है सफाई करते वक्त, दिवाली करते समय भी। तो ये साफ सफाई इतनी बड़ी हो रही है, जन्म जन्मांतर के संचित की धुलाई हो रही है, लेकिन हमको पता भी नहीं चल रहा है, पूरे स्वच्छ होकर हम लोग चमकते हुए निकल रहे हैं। कितने भी पाप महीन पाप होंगे हमारे, वज्रलेप वैसे पाप होंगे तो भी यहाँ आकर वो खत्म हो जाते हैं, इतना महिमा है इस धाम का। इसलिए आपका एक एक क्षण जो यहाँ का है ना, भाव से गुजारना, धन्यवाद के भाव से, किसी से झगड़ा मत करना, वाद विवाद मत करना, कोई अहंकार का वाद विवाद मत करना, मुझे ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये किया वो किया, ऐसे तुच्छ बातों में अपना समय मत गवाना। यहाँ पर यहाँ के लोग इतने प्रेमी हैं, आप कभी अनुभव करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब कल गए थे उधर, हाँ, लक्ष्मीनारायण बाबा को घर पे गए थे मिलने के लिए। अगर इतना प्यार से उन्होंने हमको दुलारा कि हम एकदम भाव विभोर हो गए। इतना प्रेम इस धाम में ही मिल सकता है, बाकी सब लोग स्वार्थी होते हैं, कोई प्रेम नहीं करता है दुनिया में, सब स्वार्थवश प्रेम जताते हैं। यहाँ का प्रेम जो है निरपेक्ष है, उसको भी अनुभव करना चाहिए। उसको व्याख्या करके क्या फायदा है, उसके ऊपर व्याख्या करेंगे और समझाते रहेंगे, लेकिन अनुभव के बिना उसका क्या समझ में आएगा। अरे हनी कितना मीठा होता है उसका वर्णन करते जाएंगे, लेकिन जब तक बोतल खोल के नहीं चाटेंगे उसको, तो कैसा मालूम पड़ेगा कि कैसा मीठा है ये, कैसे मालूम पड़ेगा। उस तरह से यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे आके सेवा करनी होगी, नम्र भाव रखना होगा, कृतज्ञ भाव रखना होगा, तब जाकर वो प्रेम जो है, जो राधा और कृष्ण आप पर करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, उस प्रेम का अनुभव इस ब्रजवासियों के माध्यम से आपको होता है। वो उनके प्रतिनिधि है, उनके बड़े प्रियजन है, वो परिवार के जन है उनके, उनकी सेवा यहाँ प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने भाग्य को कभी हम समझते नहीं, कभी कभी भाग्य को हम लोग भूल जाते हैं और बोलते हैं कि अरे प्रभु बम्बई ले चलो, आपका बम्बई हमको जरा घूमना है, इधर क्या है ब्रज में, ऐसे कुछ ब्रजवासी बोलते हैं। अरे हम बोलते हैं, अरे हम तो वहाँ से तंग होकर यहाँ पर आते हैं थोड़ा दिन के लिए भजन करने के लिए, और आप यहीं जन्मे हो, आपको मुंबई जाना है। मुंबई का आदमी बोलता है, प्रभु जी आपको न्यूयॉर्क में ले जाओ, लंदन ले जाओ। क्या बोलेगा अभी उसको, अरे लंदन क्यों जा रहे हो, अमेरिका क्यों जा रहे हो, उधर कोई संस्कृति नहीं है, कुछ कल्चर नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, पवित्र भूमि भी नहीं है। मैं जब पहली बार अमेरिका गया था हमारे प्रभु जी के साथ, तो जब उतरा ना उधर, तो ऐसा एकदम दिल में ऐसा, हाउ टू एक्सप्लेन टू यू, ऐसा एकदम भारी ऐसा वजन आया दिल पे एकदम ऐसा मेरे ऊपर, जब मैं न्यूयॉर्क में पहले उतरा, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर इतना पाप होता है, पाप वाले वातावरण में आए तो हृदय पर, आत्मा पर एक ऐसा बोझ वाला वातावरण जमा हो गया, डैम्पनिंग एक्सपीरियंस। और यहाँ पर आता हूँ तो ऐसा लगता है कि दिल ऐसा खिल गया पूरा, हाँ अलग ही अनुभव आता है। यहाँ पर मैं बोलता भी हूँ तो मुझे भी अलग अनुभव आता है, वहाँ पर मुंबई में बोलता हूँ तो उसका अलग अनुभव आता है, यहाँ पर कुछ बोलता हूँ तो उसका अलग अनुभव आता है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो प्रेम से भरा वातावरण है, शुद्ध आध्यात्मिक दिव्य वातावरण है। इस वातावरण में जो भी आएगा वो भी वैसा ही बन जाता है। अगर संग अच्छा मिलेगा तो उसका आत्मा खिल जाती है, उसकी जन्म जन्मांतर का जो रंग काला लगा हुआ है वो उड़ जाता है और तेज आता है चेहरे पर, इसकी कृपा है। केवल आने से होता है, आकर सेवा करेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, भाव से भक्ति करेंगे, तो फिर क्या कहने उसके। इसलिए मैं आपको सबको विनती करता हूँ, दिन के अलावा, घंटे के अलावा, मिनट के अलावा, क्षण गिनिए क्षण, क्योंकि एक एक क्षण में वो शक्ति यहाँ पर जो हमारे जीवन को परम सिद्ध कर सकती है, परम गति को प्राप्त करा सकती है, ऐसा एक एक क्षण का शक्ति है। आपको कितने क्षण प्राप्त हुए बताओ, घंटे तो कुछ नंबर में आएंगे, क्षण कितने मिले। एक क्षण भी यहाँ पर उस भावना में जिएगा तो वो भगवत भक्ति की प्राप्ति करेगा और भगवत धाम की प्राप्ति करेगा, महिमा इस जगह का। बोलो जय जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इसलिए हमने एक समय पर क्या किया, नर्सिंग स्कूल शुरू किया ना, तो हमने बोला सब स्टडी किया नर्सिंग स्कूल में क्या क्या होता है, कम्युनिटी पोस्टिंग होती है, रूरल पोस्टिंग होती है, इधर की पोस्टिंग होती है, अर्बन पोस्टिंग होती है, सेक्रेटरी वार्ड में थाना में होती है। तो हमने सोचा कि उनकी कम्युनिटी पोस्टिंग है ना, उसको बरसाना में फिट कर दो। तो कम्युनिटी पोस्टिंग का पोस्टिंग भी है, कायदे से सब कुछ ठीक है, लेकिन बरसाना फिट कर दिया तो राधा रानी का कृपा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया। ये मत समझो कि आप ऐसे बाय मिस्टेक ऐसे नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लिया हमारे पास, नहीं, ये सब भगवान की योजना है। हमारे यहाँ पर जो एडमिशन लेता है उसका भाग्य फिक्स है कि वो इधर फर्स्ट ईयर में आएगा सेवा करने के लिए। कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितने अनंत नर्सिंग स्कूल है दुनिया में, कहीं भी आप ले सकते हैं एडमिशन, लेकिन भगवान ने आपको यहाँ दिलाया और राधा रानी के चरणों में आके रखा। तो इसलिए अपने भाग्य को समझो और वैसे रहो आनंद से, यहाँ पर राधा रानी को प्रार्थना करो कि आपके चरणों की भक्ति दो। यहाँ पर आके सुखी सुखे लौट मत जाओ, यहाँ पर आओगे भगवान का नाम लेकर जाओ, भगवान का नाम का जप करने की विधि लेकर जाओ, जीवन में भगवान का नाम जोड़ दो, अपने जीवन को परिपूर्ण करो, यहाँ की प्राप्ति वो है। यहाँ पर आके आप सोचो, ये मत सोचना कि प्रमोशन हो जाएगा, नौकरी मिलेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, ये मत सोचना। यहाँ पर उनकी कृपा मिलेगी और जन्म जन्म जन्मांतर का जो बंधन है हमारा, मृत्यु जन्म का, बुढ़ापे का, वो सब छूट जाएगा यहाँ पर, और हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान धाम में जाएंगे, पुनः यहाँ पर दुख भोगने के लिए लौट के नहीं आएंगे। ये प्राप्ति यहाँ पर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।